ज़ोया का ध्यान अनायास ही उस काली कार पर गया, किंतु उसे अनदेखा करते हुए वो अरहम के शानदार बंगले में प्रवेश कर गई। ज़ोया अरहम के खूबसूरत बगीचे को पार करके शीघ्र ही अंदर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। ज़ोया मन ही मन डर रही थी कि कहीं अरहम से ही मुलाकात ना हो जाए। थोड़ी देर में अब्दुल साहब ने गेट खोला। अब्दुल साहब अरहम के बेहद पुराने नौकर थे, जो कई सालों से अरहम के साथ रह रहे थे, और वे अरहम को अपने बेटे की तरह मानते थे। अब्दुल साहब ज़ोया को देखते ही बोले, अरे ज़ोया बेटी आप? इससे पहले कि ज़ोया कुछ कह पाती, अब्दुल साहब ने पूछा, बेटा अरहम बाबा साथ नहीं आया आपके? ज़ोया, अरहम घर पर नहीं है? नहीं बेटा, वो तो कल रात से घर नहीं आए, हमें लगा आपके घर ही रुक गए होंगे। ये कैसे हो सकता है, अरहम तो रात ही मेरे घर से निकल चुका था, फिर वो अभी तक घर क्यों नहीं आए? अब्दुल चाचा चिंता से बोले। बेटी आप अंदर तो आओ। नहीं चाचा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, ज़ोया कुछ सोचकर वहां से जल्दी से निकल गई और अपनी गाड़ी में आंखें बंद किए कुछ देर बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और हमको कहाँ ढूंढे। ज़ोया की हालत अजीब सी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अरहम को ढूंढे भी या नहीं, क्योंकि अरहम ने जो उसके साथ किया था, तब से ज़ोया को अरहम से एक अजीब सी घबराहट हो गई थी। तभी कुछ सोचकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। एक काली कार अभी भी उसका पीछा कर रही थी, लेकिन ज़ोया अरहम को लेकर काफ़ी परेशान थी, इसलिए उसने उस गाड़ी पर ध्यान नहीं दिया। लगभग एक घंटे की ड्राइव के बाद ज़ोया ने अपनी कार एक और शानदार बंगले के पास रोकी। वो बंगला अरमान ठाकुर का था। इतना खूबसूरत बंगला ज़ोया ने कभी नहीं देखा था। अरहम का बंगला भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन अरमान के बंगले के सामने वो फीका पड़ जाता था। ज़ोया अपनी गाड़ी थोड़ा पहले ही पार्क कर देती है, क्योंकि अरमान का घर सड़क से ही शुरू हो जाता है। ज़ोया पैडल ही सड़क पार करती हुई सीधे बंगले के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई, किंतु सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक लिया। गार्ड, किससे मिलना है आपको? ज़ोया थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली। मुझे अरमान सर से मिलना है। ज़ोया की ज़बान थोड़ी लड़खड़ा गई थी। इतने में एक गार्ड थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, ये लड़की, अपॉइंटमेंट है तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है। तभी दूसरा गार्ड बोला, लो भाई, एक और आ गई अपनी ज़िंदगी का रोना लेकर। ज़ोया मिन्नत करती हुई बोली, देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं, मेरा अरमान सर से मिलना बेहद ज़रूरी है, प्लीज़ आप मुझे जाने दीजिए। ओ अच्छा, इन मैडम को अरमान साहब से मिलना है, एक गार्ड दूसरे गार्ड से बोला, हर रोज़ कोई ना कोई भीख मांगने आ जाता है। ज़ोया को उन गार्डों के व्यवहार देखकर काफ़ी हैरानी हो रही थी। वे गार्ड ज़ोया को कोई गरीब लड़की समझ रहे थे, क्योंकि उसके कपड़े काफ़ी साधारण थे। देखिए आप लोग मुझे अंदर जाने दीजिए, वरना आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, इस बार ज़ोया ने थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोला। तभी दूसरा गार्ड बोला, अरे ओ मैडम, हर रोज़ हम यहाँ आपके जैसे काफ़ी लोगों से मिलते हैं, जो अरमान सर के पास आते हैं और अपना उल्लू सीधा करके निकल जाते हैं, आप जाइए और पहले अपॉइंटमेंट लेकर आइए, समझिए आप? देखिए प्लीज़ आप मुझे जाने दीजिए, मुझे बेहद ज़रूरी काम है अरमान सर से। ओ मैडम, बोला ना, आपसे बिना अपॉइंटमेंट के अरमान साहब से कोई नहीं मिल सकता, आप जाइए यहाँ से, वरना मैं आपको धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। ज़ोया को यकीन हो गया था कि ये सुरक्षा गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देंगे, सोचकर उसने अरमान का नंबर डायल कर दिया। दूसरी ओर अरमान सुबह सुबह तैयार होकर नाश्ते की मेज़ पर बैठा ही था कि ज़ोया का नंबर स्क्रीन पर देखकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक सी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन सोच रहा था, मुझे पता था स्वीटी तो मुझे ज़रूर फ़ोन करोगी, और इतनी जल्दी करोगी ये नहीं पता था। अरमान जानबूझकर ज़ोया का कॉल अनसुना कर देता है और गर्मा गर्म कॉफ़ी का घूंट लेते हुए ज़ोया की हाल ही की फ़ोटो को जूम करके देखता है और अपनी दो उंगलियों से ज़ोया के कभी होंठ छूता है, कभी गाल, कभी नाक। वो फ़ोटो से ही अपनी आंखों को ठंडक दे रहा था। तभी ज़ोया के कॉल ना उठाने पर, ये अरमान सर को क्या हो गया है, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? ओ गॉड, अब मैं क्या करूँ? ज़ोया थोड़ा ज़ोर से बड़बड़ा रही थी, गार्ड आराम से उसकी आवाज़ सुन सकते थे। तभी एक गार्ड बोला, लगता है मैडम का कॉल नहीं उठाया अरमान साहब ने, अरे जानती होगी तभी ना हमारे सामने खड़ी होकर बड़ी हेकड़ी दिखा रही है। ज़ोया उन गार्डों को बस घूर कर रह गई, पर कुछ नहीं बोली। तभी उसने एक बार फिर कॉल रिडायल किया। फ़ोटो देखते हुए जब ज़ोया का नंबर फिर से स्क्रीन पर दिखा तो अरमान बोला, ओह मेरी जान को तो सब्री नहीं हो रहा है। फिर अरमान ने ज़ोया का कॉल उठा लिया। ज़ोया, हेलो हेलो अरमान सर, मैं ज़ोया बात कर रही हूँ, सर प्लीज़ मुझे आपसे मिलना है, आप प्लीज़ मेरी बात सुने। हेलो, आप सुन रहे हैं? हेलो अरमान सर। अरमान, ज़ोया रिलैक्स। ज़ोया क्या हुआ, क्यों मिलना है तुम्हें? सर वो तो मैं आपसे मिलकर ही बताऊंगी, प्लीज़ आप एक बार मुझसे मिल लीजिए, मैं आपके घर के बाहर ही खड़ी हूँ। क्या, तुम मेरे घर के बाहर खड़ी हो, तो अंदर क्यों नहीं आई? वो सर गार्ड्स ने आने नहीं दिया। ओहो, तुम रुको मैं बाहर आ रहा हूँ। अरमान बेहद खुश हो गया था, जिसका फ़ोटो देखकर वो नाश्ता कर रहा था वो अब उसके साथ होगा। ज़ोया, गार्ड्स आप लोग मुझे अंदर जाने दीजिए, अरमान सर बाहर आ रहे हैं। लेकिन वे गार्ड मानने को तैयार ही नहीं थे। उनमें से एक गार्ड बोला, ये लड़की बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, झूठ मूठ की कॉल करके हमें डराना चाहती हो, रुको मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। ऐसा कहकर एक गार्ड ने ज़ोया को बाजू से पकड़ लिया और धक्का देते हुए कहा, जाओ यहाँ से। ज़ोया इस हरकत के लिए तैयार नहीं थी, वो अपना संतुलन नहीं बना पाई और लड़खड़ा कर नीचे गिरने वाली थी कि दो मजबूत हाथ उसकी कमर पर आ गए।